जय राधव कुंज बिहारे
यह प्रवचन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा बृहद मृदंग सेवा इस विषय पर 24 जनवरी 2016 को इस्कॉन नई दिल्ली में दिया गया।
गोपी जाना बाला भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप में से किन किन भक्तों ने ये सब डिस्ट्रीब्यूशन मेरे समय से हो गया था सब अत्यंत भाग्यशाली हो। भगवान गीता में कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है जो मेरा प्रचार करता है, इससे ज्यादा प्रिय न कौन हुआ है न होगा। और हमारे शास्त्र में अनेक प्रसिद्ध श्लोक है जहाँ की प्रचार की सेवा पर बल दिया गया है। प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के वचन की सेवा पर बल दिया। इन ग्रंथों में है भगवान का उपदेश। हमारे परम गुरु जी कहते थे कि अगर संसार में किसी चीज की कमी है पृथ्वी में ज्ञान की कमी है और लोगों की अज्ञानता दूर करने की आवश्यकता है। बहुत ही अज्ञानता हम दूर करते हैं पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करके और आध्यात्मिक अज्ञानता हम दूर करते हैं इन ग्रंथों के माध्यम से और साधु संघ के माध्यम से। तो पापा जी ने बड़ी परेशानी कठिनाई के साथ इन ग्रंथों को प्रकाशित किया। जैसे बीमार प्रभु कह रहे थे भक्ति सिद्धांत जी हमारे परम गुरु जी ने पापा जी को यह आदेश दिया था कि अगर भगवान तुम्हें सुविधा दे तो ग्रंथों को प्रकाशित करना। और इस सेवा को क्या नाम दिया था बृहद मृदंग। साधारण मृदंग की आवाज थोड़ी दूर तक जा सकती है और एक ग्रंथ को आप दिल्ली में बांटो उसका ध्यान विश्व के कोने में हो सकता है। तो प्रभु जी ने कहा ये जो ग्रंथों के वचन की सेवा है इसका नया एक नाम है बृहद मृदंग, दूसरा नाम है बृहद कीर्तन। और इन ग्रंथों में ना ही भगवान का उपदेश है और साथ में हमारे जो महान आचार्य हुए हैं उनका भी उपदेश है और प्रभुपाद जी का उपदेश है। इन ग्रंथों के माध्यम से लाखों लोग जुड़े हैं भक्ति के मार्ग में। आज आप जानते हो शायद इसको के केंद्र है विश्व के कोने कोने में। पिछले साल हमने मनाया था गोल्डन जुबली, प्रभुपाद जी जब भारत से निकले थे 50 अक्टूबर August 13, 1965 प्रभुपाद जी जलदू जहाज में गए थे कलकत्ता से न्यूयॉर्क। और ये साल हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं जब इसका उनका पहला केंद्र खुला था न्यूयॉर्क में जुलाई में। और प्रभुपाद जी ने इसको उनको लीगली इनकॉर्पोरेट करके संस्था की स्थापना की। तो आज विश्व के कोने कोने में इसकॉन के केंद्र है। चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी के हर कोने में यह हरिनाम पहुंचेगा। तो प्रभुपाद जी उनके प्रतिनिधियों के प्रयास से 600 से अधिक केंद्र है सारे विश्व में। प्रभुपाद जी ने लगभग 100 ग्रंथों का अनुवाद किया जिनका आगे अनुवाद 70 से अधिक भाषाओं में हो गया। आज विश्व की कोई प्रसिद्ध भाषा नहीं है जिसमें आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों को प्राप्त नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया के पास एक आइलैंड है जहां की उस देश की आबादी है वह 8,000 पूरी आबादी, और उस देश की भाषा का नाम है पिजन लैंग्वेज। तो पिजन लैंग्वेज में भी प्रभुपाद जी के कई ग्रंथ छपे। दूसरे शब्दों में इसको के भक्तों का प्रयास है कि विश्व के हर भाषा में इन ग्रंथों को प्रकाशित किया जाए। उदाहरण के लिए बाइबल ग्रंथ का अनुवाद 150 से अधिक भाषा में हो गया है, और भगवद गीता यथारूप का अनुवाद 70 से अधिक भाषा में हो गया है। और प्रयास है कि जितनी भाषा है विश्व में सब भाषा में ये अनुवाद हो। क्यों? क्योंकि लोग इन ग्रंथों को पढ़ेंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे। भक्तों का यह भाव रहता है कि सब सुखी बने। आज हम सब सुख की खोज में हैं, पर अज्ञान व्यक्ति सोचते हैं खुशी प्राप्त होगी भौतिक सफलता के माध्यम से। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि अगर हमें असली खुशी चाहिए तो हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। जिस प्रकार मछली को अगर आप जल के बाहर रखोगे तो मछली जी नहीं पाएगी, उसी प्रकार आध्यात्मिकता के बिना कोई असली संतुष्टता प्राप्त नहीं कर सकता। आप सब जिन्होंने ग्रंथों के वितरण की सेवा में सहयोग दिया, आप सब अत्यंत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आप सब ने भगवान के आदेश के अनुसार प्रचार के कार्य में जुड़े। जब आप प्रचार करने जाते हो ये नहीं कि हर व्यक्ति आपका सहयोग देता है। आपका अनुभव है कि जब आप घर घर जाते हो कई सहयोग देते हैं और कई नहीं देते। सच जब चैतन्य महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार हरिदास और भगवान नित्यानंदा ने घर घर जाकर प्रचार शुरू किया, कई घरों में वो जब गए लोगों ने बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया, कहा कि संत महात्मा आ गए हैं हमारे घर को पवित्र बनाने के लिए, बैठिए विशाल ग्रहण कीजिए और बताइए क्या है आपका उपदेश। और कई घरों में वो गए लोगों ने दरवाजा भी नहीं खोला, लोगों ने कहा नहीं तुम अंदर नहीं आ सकते, वो दिमागी पागल हो गया है और तुम्हें भी पागल बना दिया। और कई घरों में गए लोगों ने कहा ये तो जासूस है साधु के वस्त्र में, बाद में आएंगे छुड़ाने के लिए। तो ये अनुभव किसका था? भगवान नित्यानंद हरिदास का। तो जब आप और हम प्रचार के लिए जाते हैं तो उसी प्रकार का व्यवहार हमें भी प्राप्त होता है। कई लोग साथ देते हैं, कहते हाँ स्वामी जी क्या कर सकते हैं, हर साल आप आ जाते हो गीता बांटने के लिए, हमारा कर्तव्य आपका सहयोग दे। पर कई जगह आप जाते होंगे लोग कहते होंगे क्या हर साल आ जाते हो सिर खाने के लिए, वो कोई काम धंधा नहीं है। और कई आपसे ये भी पूछते होंगे आपको कितनी कमीशन मिलती है, तो आपको बहुत कमीशन मिलती है। कैसे कमीशन मिल रही है? सच बात है आपको भगवान की कृपा मिल रही है, ये कृपा आप धन से खरीद सकते हो नहीं, सेवा के माध्यम से। आप सबका आध्यात्मिक अकाउंट तेजी के साथ बढ़ते जा रहा है, खास करके उन भक्तों का जो हर साल इस पुण्य कार्य में जुड़ते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि जब तक इन ग्रंथों का वितरण होगा मैं हमेशा जीवित रहूंगा। दूसरे शब्द में इन ग्रंथों के माध्यम से लोगों का आध्यात्मिक व्यक्तियों को अज्ञान व्यक्तियों को आध्यात्मिक जागृति प्राप्त हो रही है। तो जिस प्रकार आप भक्तों ने दिल्ली में मैराथन किया गीता जयंती के उपलक्ष, हर साल गीता जयंती के समय हम भक्तों का प्रयास रहता है गीता का संदेश घर घर पहुंचाया जाए। आपको शायद पता होगा कि आपके ईसाई भाई घर घर जाकर बाइबल बांट रहे हैं या नहीं, हरियाणा में भी पहुंच गए घर घर जाकर पांच बांट रहे। और आपके मुसलमान भाई प्रणाम भी बांट रहे हैं। तो हमारा भाव ये रहता है कि गीता का संदेश हर घर में पहुंचाया जाए। कई बार लोग कहते हैं हमारे पास तो गीता है, तो हम पूछते हैं आपके घर में कितने मोबाइल है। हर के घर में 3-4-5 मोबाइल तो है। अगर 3-4-5 गीता रखोगे उसमें बांटोगे कुछ नुकसान है उसमें, लाभ भी है। तो गीता जयंती के उपलक्ष भारत में नहीं पूरे विश्व में हमारे भक्त प्रयास करते हैं इन ग्रंथों को बांटने के लिए। उदाहरण के लिए एक देश है कजाकिस्तान, यहाँ की बहुत गहरी सर्दी है, -25 टेम्परेचर। उस वातावरण में हमारे भक्त जा रहे थे गीता बांटने के लिए। एक हमारी शिष्य उधर जिसका नाम है कृष्णा नायका, वो सुबह से रात तक मैराथन में जा रही थी और 100 गीता बांट रही थी सड़कों में। तो जिन देशों में मुसलमान आबादी है, जैसे कजाकिस्तान की आबादी 90% मुस्लिम है, और उन देशों में भी हमारे भक्त प्रचार कर रहे हैं। जिन देशों की आबादी ईसाई है वहां भी प्रचार कर रहे हैं। और उस वातावरण में कई लोगों की बेइज्जती करते हैं, कई बार उन्हें जेल में जाना पड़ता है, पर वो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक ही भाव है, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है उनका संदेश हर जगह पहुंचाया जाए। तो प्रभुपाद जी का आदेश है और उन्हें आचार्यों का संदेश आगे पहुंचाया जाए। आप आश्चर्य होंगे ये सुनकर कि ग्रंथों का कितना गहरा प्रभाव है। यूरोप में हमारे एक भक्त है, वो म्यूनिसिपैलिटी में काम करते थे, और उनका काम क्या था, जो ट्रक का जो कचरा म्यूनिसिपल ट्रक उठा के लाते हैं, देखना है वो किस प्रकार का कचरा है। तो उस कचरे में एक बार एक व्यक्ति को एक भगवद्गीता की कॉपी दिखी। उसे लगा कि ये ग्रंथ दूसरे ग्रंथों से अलग है और इस किताब का कोई महत्व होगा, उसे पता नहीं था ये ग्रंथ है। तो वो गीता घर ले गया और घर पढ़ने लगा तो इतना प्रभावित हुआ, फिर तो खोजने लगा ये शहर में कोई मंदिर है इस कौन का, फिर तो भक्तों के साथ जुड़ा और साधु संगत में रहकर अंत में भक्त बन गया। और उसका परिचय कैसे हुआ, एक ग्रंथ यूरोप की भाषा में जो कचरे में मिला था, एक भगवद गीता। एक बार रशिया में एक भक्त के घर में एक चोर आया था चोरी करने, वो चोर वो जैसे आया था घर में, वो भक्त था सोया हुआ था, उसकी नींद जाग गई, उसे बत्ती जलाई, तो चोर भागने लगा। उसने सोचा कि कुछ तो हाथ में ले लू, हाथ में ठीक हुआ एक भगवद गीता रशियन भाषा में, रशियन भाषा की गीता उठाकर भाग गया और फिर घर जाकर वो गीता पढ़ना शुरू किया। तो पढ़ना शुरू किया, इतना प्रभावित हुआ अंत में भक्त बन गया। इसी प्रकार भारत में हमारे एक भक्त घर घर जाकर गीता बांट रहे थे। एक औरत थी अपने घर में आत्महत्या करने वाली थी, किसने घंटी बजाई किसी ने दरवाजा नहीं खोला, दूसरी बार घंटी बजाई किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो भक्त ने सोचा शायद कोई घर में है नहीं, खैर उसने कहा परमात्मा ने शिक्षा दी एक बार फिर से बजाओ। एक बार फिर से बजाई घंटी, तो तीसरी घंटी पर औरत आई दरवाजा खोलने, खेले क्या है क्या है मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, इसलिए मैं आपके लिए गीता का संदेश लाया हूँ। कहने लगी मैं आत्महत्या कर रही थी, देखो ये रस्सी और तुम आ गए। तो इस भक्त ने प्रचार किया, उसने गीता पढ़ना शुरू किया और आत्महत्या का भाव छोड़ दिया। तो इस प्रकार आज लाखों लोगों का उद्धार हुआ है। ये भगवद गीता जो है लगभग 3000 पाठशालाएं हैं विश्व में ये सिखाई जा रही है। कुछ हफ्ते पहले हम लुधियाना में थे रथ यात्रा के लिए, और उस रथ यात्रा के आरंभ होने से पहले स्टेज के प्रोग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री आए थे चीफ गेस्ट के रूप में। तो मुख्यमंत्री कहने लगे कि ये साल गीता जयंती के उपलक्ष्य उन्होंने हरियाणा के 21 डिस्ट्रिक्ट्स में 3 दिन का उत्सव रखा गीता के ऊपर, पहली बार किया था। उन्होंने साथ में हर डिस्ट्रिक्ट में 5 लाख रुपए भी दिए गीता का प्रचार करने में, और कई डिस्ट्रिक्ट में इस्कॉन के भक्तों ने मिलकर गीता का प्रचार किया। वो कह रहे थे कि अगले साल हमें कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय उत्सव बनाना है इस्कॉन के साथ, गीता पढ़ने के लिए सुनने के लिए। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि ज्योतिषर जिस प्रसिद्ध स्थान में भगवान ने गीता का उपदेश दिया था वहां एक बड़ा प्रसिद्ध कृष्ण अर्जुन मंदिर बने, और इस्कॉन को भगवान की दया से 6 एकड़ की जमीन प्राप्त हुई है यहाँ के मंदिर बनाने जा रहे हैं। तो आज अगर इस समाज में किसी चीज की कमी है तो इस शिक्षा की कमी है। जब हमारे प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी तो उस समय सबको गीता दे रहे थे भेंट के रूप में, उनका एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें कह रहे थे इससे ज्यादा ऊंचा कोई संदेश नहीं है। तो ये बात सच है, भगवान कहते हैं माता पार्थमियत ये सबसे ऊंचा संदेश है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सहयोग दिया है, और आप सबके सहयोग से आपका दिल्ली का मंदिर लगभग 6,40,000 गीता पाठ लगभग 4 लाख गीता पढ़ी थी, और आपको जानकर खुशी होगी कि आपके दिल्ली में एक और मंदिर भी है। वैसे तो 12 मंदिर है, कई मंदिर जुड़े हुए हैं राधा पार्थ सारे के साथ। आपके पंजाबी बाग मंदिर ने वहां मिलकर वहां के भक्तों ने लगभग 2.5 लाख गीता पाठी थी। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो दिल्ली के भक्तों के प्रयास से लगभग 9 लाख गीता पाठी है। तो आप अंदाजा लगाओ अगर 9 लाख गीता लोगों के घर में आएगी और अगर एक व्यक्ति भी पढ़ेगा क्या प्रभाव होगा उसका। अगर आप देख रहे हो कि भक्तों की संख्या बढ़ रही है उसका मूल कारण है इन ग्रंथों का प्रभाव। तो आप सबका ये भाव होना चाहिए हमें इन ग्रंथों को पढ़ना भी है और इन ग्रंथों को आगे बांटना भी है। प्रभुपाद जी ने कहा कि इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि अगर कोई एक श्लोक भी पढ़ लेगा उसका जीवन सुधर सकता है। फिर आगे बढ़कर कहा एक श्लोक क्या एक लाइन भी ध्यान से पढ़ लेगा तो उसका जीवन सुधर सकता है। तो ये इन ग्रंथों का अध्ययन सारे विश्व में किया जा रहा है। उदाहरण के लिए चाइना देश में चाइनीज सरकार के सबसे बड़े पब्लिशिंग हाउस ने प्रभुपाद जी की श्रीमद् भगवतम को छापा है, और आज चाइना के बड़े बड़े बुक स्टोर्स में आप इन ग्रंथों को प्राप्त कर सकते हो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने प्रयास किया है कि भगवान का उपदेश घर घर पहुंचे। इस उपदेश में है क्या श्री भगवान उवाचा पर भगवान बोल रहे हैं, और वैसे तो कवियों ने गीता का अनुवाद किया है तो भगवद गीता यथा रूप के माध्यम से लाखों लोग जुड़े हैं भक्ति के बाद में। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आप केवल गीता जयंती के उपलक्ष एक ही महीना साल में बांटेंगे ग्रंथों को, हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम जिंदगी भर ग्रंथों को बांटते जाए। और अगर हमें लगता है कई बार जब आप मैराथन शुरू करते हैं भक्तों को लगता है किसके पास जाएंगे, ये सब सबके पास तब हुआ है, पिछले साल उसे, पिछले साल उसे, पिछले साल उसे, पिछले साल साठ साल। पर मेरा यह अनुभव है कि जब आप प्रयास करो और ये प्रयास करो कि कोई नया व्यक्ति जुड़े, कोई नया साधन प्राप्त हो जाता है। अनेक साधन हैं जिनके द्वारा हम इन ग्रंथों को आगे पहुंचा सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब प्रभुपाद जी की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिएगा और आपसे ये निवेदन है कि जिंदगी भर ये भाव रखिएगा कि हमने दूसरों का उद्धार करना है। वैष्णव भक्त को कहा जाता है परा दुखा दुखी, जब वो देखता है कि दूसरे व्यक्ति अज्ञानता के प्रभाव में आकर भौतिक कार्यों द्वारा सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है तो उसका हृदय अत्यंत दुखी होता है और वो सोचता है मुझे प्रयास करने दो इनको सिद्धांत के लिए। इन ग्रंथों के माध्यम से प्रभुपाद जी ने विदेशियों को आकर्षित किया और इन ग्रंथों के माध्यम से हम भक्ति में जुड़ते हैं, हमारे भक्ति का जीवन संभाल सकते हैं। हमें इनको बांटना भी है और पढ़ना भी है। तो मैं आप सबका भार प्रकट करना चाहता हूँ, खास करके मैं मोहन रूपा और हमारे राकेश उपाय का भार प्रकट करना चाहता हूँ। कईयों को जोड़ते हैं, वैसे का भार तो मैं अब सबका करना चाहता हूँ क्योंकि आप सब ने फरीदाबाद के भक्तों ने, गाजियाबाद के भक्तों ने, गुड़गांव के भक्तों ने, दिल्ली के भक्तों ने, सब ने मिलकर इस मैराथन का सफल बनाया है और प्रभुपाद जी अत्यंत प्रसन्न है आपके प्रयास है। और हमारा प्रयास है इन ग्रंथों को होटलों में बांटना। किसी होटल में जाओ आपको बाइबल दिखेगी, अब आप कई होटलों में जाओ भगवद गीता मिलेगी। और क्योंकि कई लोग हैं जो कहते हैं हम गीता बांट नहीं सकते, अब हमारा चंदा ले लो और हमारी तरफ से 10,000 गीता बांट देना। तो हम क्या करते हैं, ये गीता को होटलों में बांटते हैं, स्कूलों में बांटते हैं, अर्ध कुंभ के समय बांटते हैं और कैदियों को बांटते हैं। दूसरे शब्दों में प्रयास करते हैं कि लोगों को, हर व्यक्ति को ये शिक्षा मिले। कई स्थानों में अनुभव है कि कैदी गीता प्राप्त करने पर भगवान के नाम का उच्चारण शुरू कर देते हैं और जब जेल से निकलते हैं पहले मंदिर आते हैं बाद में अपने घर जाते हैं। हर साल हमारे भाई गीता कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो दक्षिण भारत में पिछले साल गीता कॉन्टेस्ट में एक मुसलमान विद्यार्थी ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया और हमें इस गीता कॉन्टेस्ट में लोगों को गीता की भूमिका देते हैं पढ़ने के लिए, साथ में एक इनाम भी देते हैं कि मुसलमान क्रिश्चियन सब लोग जुड़ सके। तो एक मुसलमान लड़का जीता था कॉन्टेस्ट, तो जब वो अपना इनाम लेने गया स्टेज पर उसने एक छोटा सा प्रवचन दिया। उस मुस्लिम लड़के ने कहा मैं देखता हूँ कि जब कोई मुसलमान मस्जिद में जाता है तो कुरान को साथ लेकर जाता है, मैं देखता हूँ जब कोई ईसाई व्यक्ति चर्च में जाता है तो उसके हाथ में बाइबल होती है, तो मैं ये देखता हूँ जब कोई हिंदू मंदिर में जाता है उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। पर हाथ में क्या होना चाहिए, तो ये गीता का हमें अध्ययन भी करना चाहिए। गीता में यह संदेश हम सबके लिए, तो आप सबसे निवेदन है कि आप भगवान की कृपा तो प्राप्त कर रहे हो साथ में गीता को भी रोज पढ़िए। आप में से कितने भक्त हो तो गीता को रोज पढ़ते हो? तो हर साल मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारा प्रयास रहना चाहे कि कम से कम एक श्लोक तात्पर्य के साथ पढ़े। गीता रोज पढ़ोगे बुद्धि तेज होगी, बुद्धि तेज होगी तो बड़ी सरलता से ये निर्णय कर सकोगे क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत आभार। अभी आप सबके स्कोर पढ़ोगे और काफी लंबी लिस्ट है तो आप सबको सुनाई जाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हर साल भी हम मैराथन करेंगे या नहीं, ये तो नहीं सोचे कभी रिटायरमेंट लेना है। रिटायरमेंट लेना चाहते हो तो आप कहोगे अभी अगले साल कहाँ जाएंगे हम, ये साल हम कई के घर हो आए अब कोई जगह स्थान बचे नहीं। आप भगवान कहते गीता में जो प्रयास करते मेरी सेवा करने के लिए उन्हें कुछ कमी भी होता मैं उसे दूर कर देता हूँ। तो आप अभी से सोचना शुरू कर लो अगले साल आपने कहाँ कहाँ जाना है। आपके पास 11 महीने सोचने के लिए और आप सोचोगे बड़े ध्यान से भगवान आपको बुद्धि देंगे। आप सब भक्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण।
Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.